بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
زہرا زیدی اور ساتھی ریڈیو تہران کے سبھی شروتاؤں کی سیوا میں سلام پرستت کرتے ہیں۔ شروتاؤں، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج کے کارکرم میں آپ سورہ اسراء کی ساتویں، آٹھویں اور نویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے قاری سعید توسی سے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، یدی تم کوئی بھلائی کرو گے تو وہ اپنے لیے ہی کرو گے، اور یدی کوئی برائی کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے ہی کرو گے، تو جب دوسرا وچن پورا ہونے کو آئے گا तो एक शक्तिशाली गुट आएगा जिसके लोग तुम्हारे चेहरों को बुरा बना देंगे और मस्जिदुल अक्सा में प्रविष्ट हो जाएंगे जिस प्रकार से कि वे पहली बार प्रविष्ट हुए थे, और वे जिस वस्तु को भी अपने नियंत्रण में लेंगे उसे बड़ी कठोरता से तबाह कर देंगे। शायद तुम्हारा पालनहार तुम पर दया करे, और यदि तुम पलट आए तो हम भी पलट आएंगे, और हमने नरक को काफिरों के लिए एक कड़ा कारावास बनाया है। निश्चित रूप से यह कुरान सबसे सुदृढ़ राह की ओर मार्गदर्शन करता है, और भले कर्म करने वाले ईमान वालों को ये शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है, नवंबर की 19, रबीउल सानी की 3 और आबान माह की 29 तारीख। कार्यक्रमों में हम पहले आपको विश्व समाचार सुनवाएंगे, जिसके बाद राजनीतिक चर्चा पेश की जाएगी। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप हमारे 2 साप्ताहिक कार्यक्रम सुन सकेंगे, आज की बात और टिकाऊ आर्थिक विकास। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। ईरान का मानना है कि अधिक दबाव की नीति पोम्पियो को ले डूबी। फेडरिका मोग्रेनी ने बाइडेन से ईरान के साथ वार्ता आरंभ करने का आह्वान किया है। बोल्टन का कहना है कि ट्रंप अब भी ईरान के साथ समझौता करने के प्रयास में लगे हुए हैं। इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में शांति की स्थापना के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। ईरान का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा दबाव की नीति माइक पोम्पियो को ले डूबी। क्षमा कीजिएगा, ईरान का कहना है कि अधिक से अधिक दबाव की पोम्पियो की नीति उन्हें ले डूबी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीब जादे ने प्रेस टीवी से बात करते हुए कहा, अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की निराशा अब समझने योग्य है। उन्होंने कहा कि माइक पोम्पियो की अधिक से अधिक दबाव की नीति विफल रही है। प्रवक्ता ने बताया कि अमरीका नए नए प्रतिबंध लगाकर यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा दबाव की नीति अभी भी जिंदा है, लेकिन दुनिया के लोगों को पता है कि ये नीति किस हद तक विफल रही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीब जादे ने कहा कि अमरीकी अपनी इस नीति से अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब नहीं रहे हैं। ईरान का कहना है कि अधिक से अधिक दबाव बनाने की नीति के अंतर्गत किए गए अमरीकी और इसराइली दावे तेहरान के लिए कोई महत्व नहीं रखते। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पर दबाव बनाकर ईरान को प्रभावित करने के उद्देश्य से किए गए निराधार दावों को हम कोई महत्व नहीं देते। काजिम गरीबाबादी ने IAEA की बैठक में कहा कि ईरान एजेंसी के साथ पूरी गंभीरता के साथ सहयोग करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमरीका जैसे देश को परमाणु शस्त्रों के अप्रसार के बारे में चिंता व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके पास हजारों परमाणु वॉरहेड मौजूद हैं। यूरोपीय संघ के विदेशी मामलों की पूर्व अधिकारी फेडरिका मोगरेनी ने जो बाइडेन से कहा है कि वे ईरान से वार्ता शुरू करें। यूरोपीय संघ की विदेशी मामलों की पूर्व प्रभारी ने अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को ईरान से वार्ता का सुझाव देते हुए कहा है कि ईरान JCPOA के संपूर्ण समझौते की स्थिति में ही वार्ता के लिए तैयार होगा। उन्होंने अटलांटिक काउंसिल के थिंक टैंक को संबोधित करते हुए कहा कि व्हाइट हाउस में मौजूद राष्ट्रपति ट्रंप के बाद परमाणु समझौते की ओर पलटना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमें अमेरिका की ओर से इस समझौते से दोबारा निकलने को लेकर चिंता है। यूरोपीय संघ की इस अधिकारी ने अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से मांग की है कि वे ईरान से तुरंत वार्ता शुरू करें। उन्होंने दावा किया कि परमाणु समझौता ही ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न बनने से रोक सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब भी ईरान के साथ समझौता करना चाहते हैं। जॉन बोल्टन का कहना है कि अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान से वार्ता करके समझौता करने के प्रयास में लगे हुए हैं। अमरीका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने दावा किया कि ट्रंप चुनावों में अपनी पराजय को स्वीकार नहीं करेंगे, किंतु आगामी कुछ दिनों के भीतर ईरानी अधिकारियों से मिलकर तेहरान के साथ समझौता कर सकते हैं। बोल्टन ने समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि ट्रंप ईरान के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई कर सकते थे। उनका कहना था कि यह दावा पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है। बोल्टन की ओर से यह दावा ऐसी स्थिति में किया जा रहा है कि जब ईरान बारंबार यह कह चुका है कि अमरीका के परमाणु समझौते में वापस आने की स्थिति में ही कोई वॉशिंगटन के साथ वार्ता हो सकती है। इसराइल की गैर कानूनी बस्तियों का पोम्पियो ने दौरा किया है। अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो फिलिस्तीनी इलाकों में बनाई गई उन गैर कानूनी यहूदी बस्तियों का दौरा कर रहे हैं जिन्हें राष्ट्रसंघ और विश्व समुदाय गैर कानूनी बस्तियां मानते हैं। गोलान हाइट्स के इलाके का भी पोम्पियो दौरा करेंगे जो सीरिया का इलाका है और जिस पर इसराइल का गैर कानूनी कब्जा है। पोम्पियो इन इलाकों का दौरा करने वाले पहले अमरीकी विदेश मंत्री हैं। गुरुवार की दोपहर पोम्पियो ने पश्चिमी तट के इलाके में बनाए गए एक इसराइली कारखाने का दौरा किया जहां शराब का उत्पादन होता है। पोम्पियो ने कहा कि वे गोलान हाइट्स भी जाएंगे। ये अमरीकी सरकारों की पिछली नीतियों के बिल्कुल विपरीत उठाया जाने वाला कदम है। ट्रंप प्रशासन ने 2019 में गोलान हाइट्स पर इसराइल के गैर कानूनी कब्जे को मान्यता देते हुए इसे इसराइली इलाका घोषित किया था। इसराइल ने इस इलाके पर सन 1967 में कब्जा कर लिया था। बहरीन के विदेश मंत्री ने फिलिस्तीनियों का आह्वान किया है कि वे इसराइल के साथ वार्ता शुरू करें। इसराइल की मेजबानी में तीन पक्षीय वार्ता में शामिल होने के उद्देश्य से तेल अवीव के दौरे पर पहुंचे बहरीन के विदेश मंत्री ने दावा किया कि शांति की प्राप्ति के लिए इसराइल फिलिस्तीन विवाद को खत्म करने की आवश्यकता है। अब्दुल लतीफ का कहना था कि इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को वार्ता की मेज पर आना होगा। बहरीन के विदेश मंत्री ने अपने बयान में ओस्लो समझौते से लेकर आज तक के समझौतों का उल्लंघन किए जाने की इसराइली कार्रवाइयों और गजा के परिवेष्टन तथा अवैध कॉलोनियों के निर्माण की ओर कोई संकेत नहीं किया। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर से बहरीन और इसराइल के नागरिक वीजा लेकर स्वतंत्रतापूर्ण ढंग से एक दूसरे के यहाँ यात्रा कर सकेंगे। इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में शांति की स्थापना के लिए वे हर कदम उठाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने काबुल का महत्वपूर्ण दौरा किया। ये दौरा अफगानिस्तान में अमरीकी सैनिकों को वापस बुलाने के अमरीका के ऐलान के बाद और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इमरान खान ने काबुल में आज अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात की और इसके बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। दोनों नेताओं का कहना था कि हमने करीबी सहयोग और इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अफगानिस्तान में आतंकवाद की घटनाओं के हालिया सिलसिले को कम करने के लिए अपने संयुक्त प्रयासों को तेज करने पर सहमति की है। इमरान खान ने अफगानिस्तान में दशकों से जारी अशांति का हवाला देते हुए कहा, अफगानिस्तान के लोग चार दशकों से इन हालात का सामना कर रहे हैं और अगर किसी समाज को शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो अफगानिस्तान है और यहां शांति के लिए पाकिस्तान अपनी भूमिका अदा करेगा। अफगान तालिबान ने पेंटागन की ओर से लगभग 2000 अमरीकी आतंकवादी सैनिकों के अफगानिस्तान से निकलने के फैसले का स्वागत किया है। तालिबान के अनुसार यह एक अच्छा कदम है जिससे अफगानिस्तान में जारी लंबे विवाद को खत्म करने में मदद मिलेगी। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी युद्धों को समाप्त करने के फैसले पर अमल करते हुए 20 वर्षीय युद्ध के बाद अफगानिस्तान और इराक से अपने सैनिकों की संख्या कम करने का फैसला किया है। दूसरी ओर अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने अमरीकी घोषणा का हवाला देते हुए कहा कि यह एक अच्छा कदम है और दोनों देशों के नागरिकों के हित में है। भारत में एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 45,576 नए कोरोना वायरस मामलों के साथ भारत के कुल मामले 89,58,484 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में 585 नई मौतें हुई और इसी के साथ पूरे देश में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा 131,578 को पार कर गया। भारत नियंत्रित कश्मीर में झड़प के दौरान 4 लोग मारे गए। भारतीय मीडिया के अनुसार सुरक्षा बलों की कार्रवाई में गुरुवार को 4 छापामार मारे गए। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगरोटा के बान इलाके में टोल प्लाजा के पास स्थानीय समय के अनुसार सुबह 5 बजे मुठभेड़ हुई थी। जम्मू के जिला पुलिस प्रमुख ने बताया कि लगभग 5 बजे कुछ छापामारों ने गाड़ी में छिपकर नरगोटा इलाके में बान टोल प्लाजा के पास सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। इस मुठभेड़ के कारण जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया था। इसमें एक सुरक्षा बल के घायल होने की भी सूचना है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। बगदाद के अल खजरा क्षेत्र में अमेरिकी दूतावास के प्रांगण में हुए मिसाइली हमले के बाद इराकी सरकार ने एक बार फिर अमेरिकी सैनिकों के निष्कासन पर बल दिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले मतदान को समाप्त हुए 16 दिन का समय बीत चुका है, परंतु अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हार स्वीकार नहीं की है। यही नहीं, ट्रंप ने न केवल अपनी हार स्वीकार नहीं की है बल्कि उन्होंने स्वयं को विजेता बताया है और बारंबार कहा है कि मतदान में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। भारत नियंत्रित कश्मीर में सुरक्षा बलों और अलगाववादियों के मध्य होने वाली झड़प में कम से कम 4 अलगाववादियों के मारे जाने का समाचार है। मारे गए अलगाववादियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद होने की सूचना है। ये थे हमारी आज की चर्चा के विषय। بغداد کے الخضرا چھیتر میں امریکی دوتاواس کے پرانگڑ میں ہوئے میزائلی حملے کے بعد عراقی سرکار نے ایک بار پھر امریکی سینکوں کے نشکاسن پر بل دیا ہے۔ جانکار حلقوں کا ماننا ہے کہ داعش جیسے آتنک وادی گٹوں کا استتو امریکی سینکوں کی اپستھتی کا پریام ہے، اور عراق سہت چھیتریہ دیشوں سے امریکی سینکوں کے نشکاسن کا ارتھ آتنک وادیوں کے سہایک کا چلا جانا ہے۔
بغداد کے الخضرا کھیتر میں امریکی دوتاواس کے پرانگڑ میں ہوئے میزائل حملے کے بعد عراقی سرکار نے ایک بار پھر امریکی سینکوں کے نشکاسن پر بل دیا۔ بدھوار کی صبح اور امریکی دوتاواس پر حملے کے کچھ گھنٹے بعد امریکی راجدوت عراقی ودیش منترالے میں گئے اور وہاں انہوں نے فواد حسین سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کو عراق کے ودیش منتری نے پریس کانفرنس میں اس دیش سے امریکی سینکوں کے شیگر نشکاسن کی دشا میں قدم بتایا۔
اکدنا علی ان یکون ہناک توقیتات۔
عراقی ودیش منتری کہتے ہیں کہ سنسد دوارا پارت پرستاؤ کے آدھار پر امریکی سینکوں کے نشکاسن کی سمے سارنی پر بل دیا۔ یہ ہوا ہے کہ سمست امریکی سینک جلد سے جلد عراق چھوڑ دیں، اور جو امریکی سینک عراقی سرکار کی سہمتی سے باقی رہ جائیں گے وہ کیول عراقی سینکوں کو پرشکشن دیں گے اور لاجسٹک سہیوگ کریں گے۔ عراقی سرکار اس دیش سے امریکی سینکوں کے نشکاسن کی دشا میں اب تک کئی مہتوپورن قدم اٹھا چکی ہے۔ امریکی سینکوں کے نشکاسن ہیتو سنسد میں پارت پرستاؤ اور اسی سمبندھ میں چار چرنوں میں سماپت ہونے والی وارتا کو اسی دشا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن اور بغداد کے مدھ ہونے والے سمجھوتے کے انوسار 5,200 امریکی سینکوں میں سے 2,700 امریکی سینک شیگری عراق سے چلے جائیں گے، اور شیش دوسرے امریکی سینک نکٹ بھوش میں عراق سے چلے جائیں گے۔ جلال خالدی، IRIB، عراق کا ودیش منترالے، بغداد۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش۔ कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओं, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले मतदान को समाप्त हुए 16 दिन का समय बीत चुका है, परंतु अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हार स्वीकार नहीं की है। यही नहीं, ट्रंप ने न केवल अपनी हार स्वीकार नहीं की है बल्कि उन्होंने स्वयं को विजेता बताया है और बारंबार कहा कि मतदान में बड़े पैमाने पर धांधली और घपले हुए हैं। इसी बीच धांधली के आरोपों की जांच करने के लिए उनकी महिला वकील $20,000 प्रतिदिन ले रही हैं। नजफ जादे की रिपोर्ट पेश करें साथी अख्तर अब्बास।
ऐसा कभी नहीं हुआ कि हारने वाला चुनाव परिणामों को स्वीकार न करे। यहाँ तक कि वर्ष 2000 में और उसके बाद जूनियर बुश और एल्गोर के समय भी एल्गोर ने अंत में पराजय स्वीकार कर ली थी।
Saying that Florida is too close right now.
اما فعلا فقط رودی جولیانی وکیل ترامپ روزی $20,000 میگیرد تا آنچه تقلب میخواند را پیگیری کند.
لیکن اس سمے ڈونلڈ ٹرمپ کی مہیلا وکیل پرتی دن $20,000 لے رہی تاکہ کتھت دھاندلی کے معاملے کی جانچ کر سکیں۔ ستا ہستانترن ابھی شروع نہیں ہوا۔ بائیڈن کو 4,000 آدیش دینا اور بہت سارے کارے انجام دینے ہیں۔ اب فاکس نیوز کو چاہیے کہ وہ اپنے کاریکرم میں ٹرمپ کا آہوان کرے کہ وہ سہیوگ کریں اور ستا ہستانترت کرنے والی بائیڈن کی ٹیم کو سویکار کر لیں۔
We need to coordinate on the transportation and implementation.
لیکن امریکہ کے ایک وکیل کا کہنا ہے کہ یہ پورا معاملہ نہیں ہے۔ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مدبھید کیول راجنیتاؤں تک سیمت نہیں ہیں، بلکہ جب سے ٹرمپ ستا میں آئے ہیں تب سے سنچار مادھیم بھی لوگوں کے مدھ مدبھیدوں کو ہوا دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کو لگ بھگ 7 کروڑ مت ملے ہیں اور بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور اس طرح رسی کی کھینچا تان जारी रहेगी।
Ready to come together.
और ये आगामी वर्षों में बाइडेन और ओबामा की चिंता का कारण रहेगी।
This is not normal.
वे अपने भाषणों में प्रयास कर रहे हैं कि अधिक मतभेद न हो, यहाँ तक कि ट्रम्प के बिना भी ट्रम्प की याद व मीरास अमेरिका में वर्षों तक जारी रहेगी। कामरान नजफजादे, IRIB न्यूज, न्यूयॉर्क।
भारत नियंत्रित कश्मीर में सुरक्षा बलों और अलगाववादियों के मध्य होने वाली झड़प में कम से कम 4 अलगाववादियों के मारे जाने की सूचना है। मारे गए अलगाववादियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद होने का समाचार है। पूरी जानकारी के साथ श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन।
राज्य पुलिस के IGP ने कहा है कि श्रीनगर जम्मू मार्ग पर स्थित नगरोटा के निकट भारतीय सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में 4 अलगाववादी छापा मार हताहत हुए, जिनकी फौरी तौर पर शिनाख्त नहीं हो सकी। IGP कश्मीर ने पत्रकारों के साथ जम्मू में वार्ता करते हुए कहा कि एक ट्रक में ये अलगाववादी छुपे बैठे थे, जिसकी सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने उस वाहन को रुकने के लिए कहा, परंतु वहां से उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। जवाबी कार्रवाई में 4 अलगाववादी छापामार हताहत हुए, जिनके नियंत्रण से भारी मात्रा में असला और गोला बारूद बरामद करने का भी दावा किया गया। IGP ने कहा है कि चूंकि DDC के चुनाव होने हैं और उनके अनुसार अलगाववादी छापामार उसमें बाधा डालने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और ये उसी की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि जिस वाहन में ये लोग सवार थे उसमें से काफी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। यह भी बताया गया कि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अलगाववादी छापामार जम्मू प्रांत से घुसपैठ करने में सफल हुए थे और अब वो कोई बड़ी घटना अंजाम देने के कोशिश में थे, परंतु उनकी कोशिश असफल बना दी गई। उन्होंने कहा कि अलगाववादियों की तरफ से कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। इस बीच दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा के एक क्षेत्र में एक बार फिर भारतीय सुरक्षा बलों और अलगाववादियों के बीच एक और मुठभेड़ की सूचना प्राप्त हुई है। IGP कश्मीर ने इस हवाले से पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा,
आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज बंटोल प्लाजा के एनकाउंटर हुआ है उसके मुतल्लक है। हमारे साथ IG CRPF मौजूद है, DIG जम्मू, DIG CRPF, SP ऑपरेशंस, SSP जम्मू सभी मौजूद है। पिछले कुछ दिनों से जब से DDC इलेक्शंस की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें ये था कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन संभावित है और किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए भारी मात्रा में हथियार लेके इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश में है, इसको मद्देनजर रखते हुए और पिछली जो 2-3 वारदातें हुई हैं जिसमें इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुई हैं और मिलिटेंट्स पकड़े गए हैं तो मारे गए हैं, हमने सभी नाकों को अलर्ट कर दिया था और बीफ अप कर दिया था। सभी नाकों पे कंपोजिट स्ट्रेंथ ऑफ पुलिस और CRPF मौजूद थी। इस सिलसिले में आज सुबह 5 बजे जब चेकिंग चल रही थी तो एक ट्रक को रोका गया और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहां से फरार हो गया। शक जब हुई तो जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो पुलिस और CRPF की पार्टी थी उन पर फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। धीरे धीरे और भी फोर्सेस ने ज्वाइन किया और लोकल वहाँ की आर्मी यूनिट ने भी हमारा साथ दिया। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफ़ी भारी मात्रा में एमिनेशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए जो अभी आउट ऑफ डेंजर है।
इस बीच DDC चुनाव के हवाले से भी तमाम तर राजनीतिक दल लोगों को रुझाने में लगे हुए हैं। इस हवाले से नई दिल्ली की ओर से जो वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें भारतीय के गृहमंत्री और अन्य मंत्रियों ने जिस तरह से पीपल्स अलायंस को निशाना बनाया है, उस पर उन्होंने तीखी प्रक्रिया प्रकट की है। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
यह तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। श्रोताओ, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा। टिकाऊ आर्थिक विकास पर। उससे पहले आप सुनिए दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम आज की बात।
आज की बात।
दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात लेकर उपस्थित हैं। अख्तर रिज़वी का सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम में हम तथाकथित लव जिहाद की आड़ में एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने पर चर्चा करेंगे। कुछ वर्षों से भारत में लव जिहाद की एक नई शब्दावली शुरू हुई। तथाकथित लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। लव अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्यार, मोहब्बत, इश्क, और जिहाद अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संघर्ष। कट्टरपंथी हिंदू इस शब्दावली का प्रयोग करके एक विशेष समुदाय के लोगों को बहुत परेशान करते हैं।
पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है इस विषय को लेकर, और हम सब हिंदू समाज की भावनाओं को ध्यान में रख के इस संदर्भ में जिला प्रशासन से, सरकार से, सभी से जिनसे मिलना होता है मिलते हैं और मिलते भी रहेंगे, और हिंदू समाज की इस लड़ाई को अंतिम पड़ाव तक पहुँचाने के लिए हम संकल्पित हैं। इस प्रकार की घटनाएं ना हो इसके लिए हम लोग पूरा प्रयासरत हैं।
आए दिन सड़कों पर युवाओं की पिटाई कर दी जाती है और उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने हिंदू धर्म की लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। जबकि धर्म परिवर्तन करने वाली लड़कियां अपने बयान में ये कहती नजर आती हैं कि उन्हें धर्म परिवर्तन करने में किसी भी प्रकार के दबाव का सामना नहीं है। शालिनी यादव से फिजा फातिमा बनने वाली लड़की का कहना है कि
मैं 2 जुलाई को आके हमने गाजियाबाद से शादी की। मैंने अपनी मर्जी से, अपनी राजी खुशी से, बिना किसी दबाव, बिना किसी फोर्स से मैंने अपना कन्वर्जन किया। हमने निकाह किया और निकाह के साथ साथ हमने कोर्ट मैरिज भी की, और ये हमारा
2 तारीख को गाजियाबाद से हमने दोनों ने अपने खुद से कोर्ट मैरिज की है, ये रहा सर्टिफिकेट।
लेकिन ये कट्टरपंथी कहाँ मानने वाले हैं और कहते हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए उस पर दबाव डाला गया है। ये केवल आम कट्टरपंथी नहीं कहते बल्कि लव जिहाद सरकारी स्तर पर भी प्रयोग होने लगा और भारत के कई राज्यों की सरकारों ने ऐलान किया है कि वो इस पर नियंत्रण पाने के लिए कानून लाने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक में भाजपा की सरकारें हैं और इन्होंने इस कानून को लागू करने का इशारा दिया है। एक बयान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो अजीबोगरीब चेतावनी दे डाली कि जो लोग छद्म वेश में चोरी छिपे अपना नाम छिपाकर या अपना स्वरूप छिपाकर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, अगर वे नहीं सुधरे तो राम नाम सत्य की यात्रा अब निकलने वाली है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया, शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे, छद्म वेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाते हुए ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यहां तक कह दिया है कि योगी यूपी के मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन उन्हें संविधान की कुछ भी समझ नहीं है।
भारत देश में बीजेपी आरएसएस एक मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ कहती रहती है ताकि मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काया जाए। जब कोरोना चल रहा था तो तबलीगी जिहाद कहा, कोर्ट ने उसको कहा कि झूठ है, फिर यूपीएससी का जिहाद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बता दिया क्या है सच्चाई क्या है। अब लव जिहाद की ये योगी बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनको संविधान नाम की चीज ना समझ में आती ना उनको कुछ मालूम।
2009 में हिंदू जागृति .org नामक वेबसाइट ने दावा किया था कि केरल में मुस्लिम यूथ फोरम नामक संगठन ने लव जिहाद का एक पोस्टर लगवाया है जिसमें कथित तौर पर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करवाने और फिर उनसे शादी कर लेने की बात की गई है। फिर ऐसी ही बात दूसरे राज्यों से भी उठने लगी, लेकिन कुछ हिंदू संगठन के ये दावे कितने हद तक सच्चे हैं, कानपुर में हुई इस तरह की कुछ घटनाओं की जांच कर रहे SIT प्रमुख का कहना है।
कानपुर के हैं, उसमें 2 साल के जो केसेस हैं उन केसेस को जो है कंपाइल किया, लगभग 14 केसेस ऐसे हैं, कुछ जो है जिसमें कुछ में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है, और जो मतलब 14 में से सिर्फ 7 केसेस ऐसे हैं जिसपे हमारी अभी काम भी चल रहा है। उन केसों को भी देखा गया तो उन केसेस में कोई इस तरह की बात नहीं थी, लोग में जो है जो गर्ल्स थी उसने जो है एक दूसरे को जानते थे अपना, उनका जो है उसके हिसाब से फाइनल रिपोर्ट लग गई है उसमें।
हिंदू जागृति ने 5 मुस्लिम वेबसाइट्स का भी उल्लेख किया था कि उनमें ऐसी बातें की गई हैं। केरल पुलिस ने इस पर विस्तृत जांच पड़ताल की और लव जिहाद के आरोपों को झूठा पाया। तथाकथित लव जिहाद के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी एक जोरदार बयान दे डाला।
देखिए, बहुत ही एक ऐसी घटना हुई है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये विषय लव जिहाद के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। लव जिहाद वाला विषय भी इसके ऊपर बाकायदा विचार चल रहा है और केंद्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं इन चीज की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए विचार कर।
मजे की बात यह है कि हिंदू कट्टरपंथी संगठन लव जिहाद का राग तब भी अलापते जा रहे हैं जबकि अभी फरवरी में ही खुद भारत सरकार ने संसद में कहा कि वर्तमान कानूनों में लव जिहाद जैसी कोई चीज कहीं भी परिभाषित नहीं है और किसी केंद्रीय जांच एजेंसी के पास ऐसा कोई केस नहीं है। भारत के एक मुस्लिम धर्मगुरु ने यूपी सरकार का मजाक उड़ाते हुए कहा,
पहले योगी जी ये किसी से पूछ लें कि जिहाद के मानी क्या है, तो लव ये अलग चीज है, अंग्रेजी का लफ्ज है, ऐसा कोई कानून जिसके कोई मानी ना हो कैसे बना रही हो।
भारत के 3 भाजपा शासित राज्यों में से एक हरियाणा भी है जो कथित लव जिहाद को रोकने के लिए कड़े कानून लाने की कोशिश में है और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तो लव जिहाद के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ के बयान के बारे में कहा कि वो जो कुछ भी कहते हैं और जब कहते हैं वो सही होता है।
योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं जब कहते हैं सत्य कहते हैं। ये लव जिहाद का इलाज करना जरूरी है बच्चियों को बचाने के लिए, अगर इसके लिए कानून बनाना पड़े तो कुछ और करना पड़े तो।
अब उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल स्वयं कह रहे हैं कि यदि सरकार अंतर धर्म विवाह रोकने मात्र के उद्देश्य से कानून लाती है तो वो गैर कानूनी होगा। चूंकि अभी सरकार कानून नहीं लाई है इसीलिए उस विषय में कुछ और कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तथाकथित लव जिहाद के बारे में उत्तर प्रदेश के कानपुर की एकता वर्मा से आलिया खान बनने वाली लड़की ने कहा कि
नहीं, लव जिहाद नहीं है, लव मैरिज है मेरी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने हमको फंसाया नहीं है, जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से ही हमने किया था।
और आपका ये धर्म परिवर्तन करने का ये डिसीजन किसने लिया, कैसे लिया, कुछ तो सोच समझ के लिए होंगे।
नहीं, ये फैसला भी हमें ही ने लिया था,
ये मोहसिन ने कभी नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूँ तो आपको भी मुसलमान बनना पड़ेगा?
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था।
कट्टरपंथी संगठन इस पर आधिकारिक रूप से कुछ बोलने से बचते हैं, लेकिन उनकी सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाली विचारधारा का काफी हद तक सही अनुमान उनके नेताओं के बयानों, सोशल मीडिया पर व्याप्त संदेशों और कितनी ही अनाधिकारिक वेबसाइट्स की सामग्री से लगाया जा सकता है। एकता वर्मा से आलिया खान बनने वाली लड़की कहती हैं कि मुझे बजरंग दल के नेताओं ने बहुत डराया और धमकाया और कहा कि हम किसी हद तक भी जा सकते हैं।
बजरंग दल के लोग घर पे आए थे, वहाँ पे जी मेरे घर पे आए, तो उन्होंने भी काफी समझाया, उन्होंने भी ये चीज बोली थी कि अगर तुम नहीं मानोगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने ये बात बोली थी बजरंग दल के लोगों ने। तो काफी देर समझाते रहे, कहेंगे नहीं होगा तो मोहसिन के खिलाफ हम कुछ कर देंगे, तो उसको फंसा देंगे। तो हमने कहा जो आप लोगों करना आप लोग करिए, हम अपनी जो मर्जी है कि हम वो करेंगे।
प्रश्न ये उठता है कि जब खुद केंद्र सरकार ही मान चुकी है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो फिर कुछ राज्य सरकारों को उस पर कानून लाने की क्यों सूझी? कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे विचार राष्ट्र और समाज के हितों के विरुद्ध सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का कार्य कर रहे हैं और इसलिए इनका तत्काल कठोरता पूर्वक शमन आवश्यक है। सरकारों को किसी काल्पनिक वस्तु पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसे कानून बनाए जाते हैं तो ये विधायी अधिकारों का दुरुपयोग होगा। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें अनुमति दें। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। टिकाऊ आर्थिक विकास।
दोस्तों, कार्यक्रम टिकाऊ आर्थिक विकास के करने कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, इस नई श्रृंखला में हम ईरान में उत्पादन और आर्थिक विकास पर चर्चा के साथ ही ईरान की अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों से आपको परिचित कराएंगे। उद्योग हर देश की अर्थव्यवस्था की नींव होता है और उसी के सहारे कोई भी देश विकास की राह में आगे बढ़ता है। खदान, कारखाने और ऊर्जा तथा निर्माण उद्योग के क्षेत्र के मुख्य भाग माने जाते हैं। आज हम उद्योग के एक मुख्य स्रोत इस्पात, जिसे स्टील भी कहते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे। उद्योग इस्पात तेल उद्योग के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। इस्पात उद्योग को किसी देश के आर्थिक विकास की धुरी माना जाता है। किसी भी देश का अगर स्टील उद्योग मजबूत हो तो वो उस देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा सकता है। हमने टिकाऊ अर्थव्यवस्था की पिछली कड़ी में ईरान के उद्योग इतिहास पर एक नज़र डाली थी। हमने पिछले कार्यक्रम में आपको ये भी बताया था कि ईरान के घरेलू उत्पाद में उद्योग की भूमिका 40% से अधिक की है। इसी तरह ये भी बताया था कि ईरान में उद्योग विकास के लिए जो काम किए गए हैं उनमें लघु और मध्यम उद्योग के विकास के लिए सरकार की वो नीति है जिसमें उन्हें सहायता प्रदान की जाती है और उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसका कारण यह है कि लघु उद्योग लचकदार होता है और उत्पादन की प्रक्रिया में परिवर्तन को सरलता से स्वीकार कर लेता है और साथ ही लघु उद्योग रोजगार के सबसे अधिक अवसर भी पैदा करता है। आज के कार्यक्रम में हम ईरान के मूल उद्योगों में से एक स्टील उद्योग की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे।
कच्चे तेल के बाद स्टील दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान सामग्री है। इस तरह की किसी भी देश का अगर स्टील उद्योग मजबूत है तो वो उस देश के आर्थिक विकास के विस्तार में अहम भूमिका निभा सकता है। कच्चे माल के संदर्भ में स्टील कई अन्य उद्योगों और व्यवसायों का आधार है। बहुत ही मुश्किल से कोई ऐसा उद्योग देखने को मिलेगा कि जिसमें स्टील का इस्तेमाल न होता हो। स्टील उद्योग जो मूल उद्योगों में से एक मुख्य उद्योग है, ये एक ऐसा मुख्य उद्योग है कि जिससे कई छोटे और बड़े उद्योग जुड़े हुए हैं। उद्योग जगत में स्टील की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि किसी भी उद्योग के बारे में बिना स्टील के विचार करना लगभग असंभव है। विश्व इस्पात संघ के आंकड़ों के अनुसार 70 देशों से भी कम देश स्टील के उत्पादन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे देश जो स्टील के उत्पादन से दूर हैं वे विकास के रास्ते की अनदेखी कर दें और या उन देशों पर निर्भर हो जाए जो स्टील का उत्पादन करते हैं।
इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद से पिछले कई दशकों में ईरान ने स्टील उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। ईरान ने इस क्षेत्र में न केवल यह कि स्टील की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा किया है बल्कि वो अपने स्टील उत्पादों का निर्यात करने में भी सफल रहा है। इस समय ईरान में 110 कंपनियों से अधिक कंपनियां स्टील उद्योग के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन कंपनियों में जोब आहन इस्फहान, फुलाद मुबारक इस्फहान, फुलाद खुजिस्तान, हुरमुजगान, अल याजी ईरान, खुरासान, कावे जुनूब, सबा फुलाद, बिनाब और चादर मेलू, इनका नाम लिया जा सकता है। इन कंपनियों की सक्रियता और गतिविधियों ने इस्लामी क्रांति के आरंभिक वर्षों के मुकाबले में अब तक देश के स्टील उद्योग में 600% की वृद्धि की है। वैसे तो वास्तव में ईरानी इस्पात उद्योग की मूल नींव वर्ष 1927 में रखी गई थी। इस वर्ष ईरानी राष्ट्रीय इस्पात उद्योग समूह नामक पहली स्टील रोलिंग मिल की स्थापना की गई थी। निजी क्षेत्र द्वारा सभी प्रकार के आयरन रॉड और छोटे मोटे लोहे के एल्बो के उत्पादन का काम शुरू किया गया।
वर्ष 1929 में ईरान और सोवियत संघ ने जोबाहन इस्फहान के कारखाने के निर्माण को लेकर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जिसे पूरा होने में 6 वर्षों का समय लगा। इस्लामिक क्रांति की सफलता से पहले जोबाहन इस्फहान कंपनी का उत्पादन प्रति वर्ष 36,000 टन तक सीमित था। एक और जोबाहन इस्फहान का उत्पादन कम था जिसका कारण कच्चे माल का कम होना था। दूसरी ओर देश में इसकी पैदावार कम थी क्योंकि देश में स्टील शीट का उत्पादन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसमें ध्यान योग्य बात यह है कि उस समय देश का इस्पात उत्पादन विदेशी विशेषज्ञों पर निर्भर था और घरेलू क्षमता की कमी थी।
ऐसी स्थिति में कि जब ईरान का स्टील उद्योग 100% विदेशी विशेषज्ञों पर निर्भर था, इस्लामिक क्रांति की सफलता के साथ ही विदेशी विशेषज्ञों की ईरान से वापसी हो गई, लेकिन इसके साथ ही ईरान के इस्पात उद्योग पर संकट गहरा गया। इस बीच इराक द्वारा ईरान पर थोपे गए युद्ध के आरंभ से भी काफी समस्याएं उत्पन्न हुई। आधारभूत संरचनाओं और कारखानों पर हुई बमबारी भी इस बात का कारण बने कि स्टील उद्योग तबाही के कगार पर पहुंच गया, लेकिन ये सभी सीमितताएं इस बात की रुकावट न बन सकी कि देश के अधिकारी और योजनाकार स्टील उद्योग के महत्व को नजरअंदाज करें। देश में लगभग 3 अरब टन की अनुमानित विशाल आयरन ओर की खदानों का अस्तित्व, साथ ही घरेलू उत्पादन पर ध्यान देने और कच्चे तेल को रोकने की आवश्यकता, ऐसे कारण थे जिन्होंने देश के अधिकारियों का ध्यान इस्लामी क्रांति की जीत के बाद इस्पात उद्योग के विकास की ओर खींचा।
पिछले 4 दशकों में इस क्षेत्र में काफी निवेश हुआ है। देश के विभिन्न प्रांतों में एक के बाद एक कई कारखानों का निर्माण हुआ है और ये सभी कारखाने उत्पादन के क्षेत्र में भी प्रवेश कर गए हैं। आज हम ईरान की स्टील कंपनियों में आयरन ब्लॉक, सभी प्रकार के औद्योगिक स्टील पाइप, आयरन शीट, सभी प्रकार के निर्माण बीम, कार्बन स्टील, जस्ती चादरें, स्पंज, आयरन और छर्रे जैसे उत्पादों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि ईरान का इस्पात उद्योग अब पूर्ण रूप से स्वदेशी हो गया है। इस्लामिक क्रांति की सफलता के आरंभिक वर्षों के मुकाबले में ईरान के इस्पात उत्पादन में 600% की वृद्धि हुई है और अब ये उत्पादन 3 करोड़ टन को भी पार कर गया है। ईरान ने 2019 में दुनिया में सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन करने वाले 10 देशों में जगह बनाई थी।
स्टील उद्योग का एक ऐसा उद्योग है जिसका संबंध लगभग दुनिया के हर उद्योग से है। घर की छोटी छोटी वस्तुओं से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों और कारखानों के निर्माण में स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। ईरान का स्टील उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के एक बड़े अवसर में परिवर्तित हुआ है। विशेष बात यह है कि ईरान पिछले 40 वर्षों के दौरान स्टील का इस्तेमाल करने वाले बड़े देशों में शामिल हुआ है। इस समय ईरान स्टील का आयात करने वाले देश से ऊपर उठकर एक निर्यातक देश के रूप में विश्व में जाना जाने लगा है। लगभग 2 करोड़ टन ईरान में स्टील का उत्पादन होता है। इसमें से 1,20,00,000 टन की स्वयं ईरान के भीतर खपत है, जबकि 1,30,00,000 टन आवश्यकता अनुसार निर्यात किया जाता है। पड़ोसी देश जैसे तुर्की, इराक, फारस की खाड़ी के देश और सीरिया ईरानी स्टील उद्योग के प्रमुख बाजार हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में अगस्त महीने के अंत तक ईरान के इस्पात उद्योग ने 1,75,00,000 टन स्टील का उत्पादन करके 6.5% की वृद्धि दर्ज कराई है। ये ऐसी स्थिति में है कि विश्व में स्टील उद्योग की वृद्धि का प्रतिशत केवल 3.5% है।
ईरान में संतुलित इस्पात उत्पादन श्रृंखला के पूरा होने के साथ प्रतिरोधक अर्थव्यवस्था के कार्यक्रम के ढांचे के अंतर्गत पश्चिमी एशिया के इस्पात उत्पादन का 60% से अधिक का उत्पादन होता है। इसके अलावा ईरान में स्टील का उत्पादन फ्रांस और इटली जैसे देशों से कहीं अधिक होता है। यह ऐसी स्थिति में है कि 5 वर्षों के बाद 6वीं विकास योजना के अंत तक ईरान के स्टील उद्योग ने लगभग 5,50,00,000 टन तक इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य पूरा किया है। स्टील के इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन के साथ ही ईरान दुनिया के 7 इस्पात उत्पादक देशों में शामिल हो जाएगा। ये प्रगति ईरान का स्टील उद्योग ऐसी स्थिति में प्राप्त कर रहा है कि जब अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान की कई स्टील कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रखे हैं।
ईरान के स्टील उद्योग में सक्रिय कंपनियों में जोब आहान इस्फान जैसी कंपनियों का विशेष स्थान है। ये कंपनी ईरान में स्टील और रेल निर्माण जैसे क्षेत्र में काम करने वाली सबसे पहली बड़ी कंपनी है। जोब आहान इस्फान स्टील कंपनी पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी है। ये कंपनी विभिन्न प्रकार के निर्माण और औद्योगिक स्टील का उत्पादन करती है। ईरान के स्टील उद्योग में इस कंपनी की मुख्य और महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इस क्षेत्र की अन्य कंपनियों ने जोब आहान इस्फान को ईरान के इस्पात उद्योग की मुख्य कंपनी का नाम दिया है। जोब आहान इस्फान कंपनी मुख्य रूप से इमारतों और कारखानों से संबंधित सामग्रियों का बड़े स्तर पर उत्पादन करती है।
इस्पात उद्योग की एक अन्य ईरानी कंपनी जिससे आपको परिचित कराएंगे वो फुलाद मुबारक इस्फान है। ये वो कंपनी है जिसे ईरान में स्वदेशी होने के कारण आदर्श के रूप में माना जा सकता है। फुलाद मुबारक इस्फान स्टील उद्योग की एक ऐसी इकाई जिसके पास न केवल देश का सबसे बड़ा इस्पात निर्माण परिसर है बल्कि उसका परिसर ईरान के सबसे बड़े औद्योगिक परिसरों में से एक है और स्टील उद्योग में ईरानी आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी बन गया है। फुलाद मुबारक इस्फान निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित की जाने वाली ईरान की मुख्य कंपनी है। वर्ष 1992 में इस कंपनी ने अपनी गतिविधियों को आरम्भ किया।
इसका वार्षिक उत्पादन 1 करोड़ टन से अधिक है। ये कंपनी भारी और हल्के दोनों तरह के स्टील उत्पादनों का उत्पाद करती है। फुलाद मुबारक इस्फान को ईरान में स्टील शीट के उत्पादन के क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ईरान की ये स्टील कंपनी देश के 50% इस्पात उत्पादों की पूर्ति करती है। गाड़ियों से लेकर लोहे के पाइप और हर तरह की छोटी और बड़ी स्टील सामग्रियों की उत्पादन करती है। इस कंपनी की विशेषता ये भी है कि यहाँ पर आरंभ से लेकर अंत का स्टील का सारा काम होता है। इस समय ईरान के स्पंज आयरन के उत्पादन में भी दुनिया के 3 सबसे मुख्य देशों में से एक है और फुलाद मुबारक इस्फहान 1 करोड़ 1 लाख टन के उत्पादन के साथ स्पंज आयरन के उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है।
दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, भी आपने हमारा कार्यक्रम सुना, टिकाऊ आर्थिक विकास। कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। हमारे कार्यक्रमों को आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, partstoday.com/hi। तो इसी के साथ रेडियो तेहरान से हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी से हम अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज़।